पृष्ठ संख्या 106। प्रारंभ से ही शांति वार्ता के लिए जापान और रूस ने अपनी अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित कर लिया था। जापानियों ने इसे तीन हिस्सों में बांटा था। प्रथम हिस्से को विशेष महत्व दिया गया था। इसमें वे मांगे थी जो युद्ध में बनी जापानी स्थिति को बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी थी। इसमें कोरिया संबंधी मांगे, मंचूरिया से रूसी और जापानी सेनाओं की वापसी, हार्पिन और पोर्ट्समाउथ के बीच निर्मित रूसी रेलवे को जापान को सौंपना तथा पट्टे पर दिया गया कुआंगतुंग का इलाका सम्मिलित था। दूसरी श्रेणी में इससे कम जरूरी मांगे थी, परंतु प्रयास इन्हें भी हासिल करने का ही किया गया। यह युद्ध में हुए खर्चे का हर्जाना, युद्ध के कारण तटस्थ बंदरगाहों में शरणागत रूसी युद्धपोतों को जापान को सौंपना, शाखालिन द्वीप जापान को देना, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रूसी जमीन पर जापान को मछली पकड़ने का अधिकार देना शामिल थे। तीसरी श्रेणी की मांगे वार्ताकारों के निर्णय पर आश्रित थी। इनमें सुदूर पूर्व में रूसी नौसैनिक सामर्थ्य पर अंकुश, व्लाडिवोस्टोक की किलेबंदी को तोड़ना और उसे व्यापारिक बंदरगाह बनाना सम्मिलित थे। रूसी प्राथमिकताओं को भी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता था। प्रथम श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े वे मुद्दे थे जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वे थे, पहला रूसी भूमि का समर्पण, दूसरा युद्ध क्षति का हर्जाना देना, तीसरा व्लाडिवोस्टोक की किलेबंदी को तोड़ना, चौथा प्रशांत सागर में सैनिक जहाजों को रखने के अधिकार की समाप्ति, पांचवा प्रशांत सागर में रूसी कार्यों पर किसी भी अंकुश की स्वीकृति, छठा व्लाडिवोस्टोक को पूरे रूस के साथ जोड़ने वाली रेल पटरी का समर्पण। मांगों से संबंधित स्थिति से निपटने के लिए राजदूतों के समक्ष अनेक सुझाव रखे गए। उदाहरणार्थ, युद्ध क्षति के हर्जाने के बदले जापान को वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक स्वरूप की रियायतें इस तरह देना जिनसे प्रत्यक्ष रूप से रूसी हितों को नुकसान न पहुँचे। युद्ध क्षति के हर्जाने के बदले साइबेरिया या पूर्वी चीनी रेलवे पर चुंगी संबंधी सुविधाओं को देने का सुझाव भी पेश किया गया। इसी समय रूस जापान को पट्टे पर दिया कुआंगतुंग प्रदेश, जिसमें पोर्ट आर्थर और तालिएन बंदरगाह थे, सौंपने के लिए तैयार था। वह चिलिन प्रांत की सीमा पर मंचूरिया रेलवे की दक्षिणी शाखा को भी उसे सौंपने के लिए तैयार था, परंतु रूस हार्पिन से होकर जाने वाली उस रेलवे पर अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो व्लाडिवोस्टोक को साइबेरिया से जोड़ती थी। रूस यह भी चाहता था कि सुंगारी नदी में जहाज रानी पर उसका अधिकार बना रहे। जहां तक कोरिया का प्रश्न था, रूस वहां पर जापान की प्रभुता को स्वीकार करने के लिए तैयार था, बशर्ते जापान कोरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार करे, वहां पर किलेबंदी या सेना का जमाव न करे और कोरिया जलडमरु मार्ग से रूसी जहाजों को जाने दे। इस प्रकार एक लंबे समय की वार्ता, प्रस्तावों और विरोधी प्रस्तावों के बाद 30 अगस्त 1905 को जो संधि हुई उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। कोरिया के संबंध में जापान के सर्वोच्च राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। जापान को कोई भी कार्य करने या उसके उद्योगों को स्वतंत्रता भी दी गई, परंतु जापान के ऊपर तीन अंकुश लगाए गए। पहला अंकुश कोरिया की सार्वभौमिकता से जुड़ा हुआ था जो जापानियों को हमेशा बनाए रखनी थी। यदि भविष्य में इस सार्वभौमिकता को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कदम जापान को उठाना पड़ता तो ऐसा वह कोरियाई सरकार की सहमति से किया जाना था। चूंकि फरवरी 1904 के संलेख के अंतर्गत जापान ने कोरिया के आंतरिक और विदेश मामलों पर अपना अधिकार जमा लिया था, स्वतंत्र देश के रूप में कोरिया का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो गया था। वहां जापानी सलाहकारों की नियुक्ति हो चुकी थी और आवागमन के साधन भी जापान के अधीन थे। ऐसी स्थिति में कोरिया की सार्वभौमिकता सीमित ही थी और इसके संदर्भ में जापान पर लगाए गए प्रतिबंध औपचारिक ही थे। यह तथ्य तब और अस्पष्ट हो जाता है जब यह बताया जाए कि 1905 में नवीकृत आंग्ल जापानी समझौते में यह कहा गया था कि जापान कोरिया में अधिकार सुरक्षा और निर्देश के लिए वह कदम उठा सकता था जो उसके अधिकारों को बनाए रखने के लिए जरूरी थे। जुलाई 1905 में जारी अमेरिकी जापानी ज्ञापन पत्र ने भी इनका समर्थन किया। दूसरा और तीसरा अंकुश कोरिया में रूस वासियों की स्थिति और रूसी कोरियाई सीमा पर सैनिक गतिविधियों को जारी न रखने के आश्वासन से जुड़े हुए थे। जापान रूस वासियों को सर्वप्रिय राष्ट्र अधिनियम मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के समकक्ष अधिकार देने के लिए तैयार हो गया और उसने कोई भी ऐसा कदम न उठाने का वचन दिया जो रूसी और कोरियाई भू सुरक्षा को खतरा पहुंचाए। मंचूरिया प्रदेश में अधिकारों और सुविधाओं के संबंध में यह स्वीकार किया गया कि जापान और रूस के साथ साथ विदेशी शक्तियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो मुक्त द्वार के आदर्श और समान भाईचारे के आधार पर उस प्रदेश के व्यापारिक और औद्योगिक हित से जुड़े हुए थे। पूर्वी चीनी रेलवे के निर्माण और उपयोग से भी यह अधिकार जुड़े हुए थे। जापान और रूस के ने समांतर रूप से मंचूरिया के सभी हिस्सों को खाली करना भी स्वीकार किया। रूस और जापान के अधीनस्थ मंचूरिया के प्रदेशों को चीन के प्रशासन के अधीन सौंपने का निश्चय किया गया, परंतु लियाओ तुंग प्रदेश जो पट्टे पर सौंपा गया था उस पर शर्तें लागू नहीं थी। रूस जापान को पोर्ट आर्थर, तालियेन और उसके साथ जुड़े प्रदेश तथा पट्टे से जुड़ी शर्तों के अनुसार सभी अधिकार और सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गया। रूस ने भी जापान को सौंपना शुरू किया। रूस ने इस प्रदेश में पूर्वी चीनी रेलवे की जरूरत से संबंधी कोयले की खानों को भी जापान को सौंपना स्वीकार कर लिया, परंतु यह फैसला भी अंततः चीनी सरकार की सहमति पर निर्भर था। जापान द्वारा युद्ध क्षति के हर्जाने और युद्ध के दौरान विजित सखालिन प्रायद्वीप की मांग को लेकर यद्यपि उसने कठोर और किसी और समझौते को न मानने का दृष्टिकोण अपनाया, परंतु अंततः जापान रूस के न झुकने वाले दृष्टिकोण के समक्ष नतमस्तक हो गया। ऐसा रूस द्वारा युद्ध की तैयारी की योजनाओं को देखते हुए उत्पन्न संघर्ष की स्थिति को बचाने के लिए किया गया था। जापान ने यह भी पेशकश की कि यदि उसे आधा साखालिन सौंपा जाता है तो वह युद्ध क्षति के हर्जाने को आधा करने के लिए तत्पर था, परंतु रूस इस धन के बदले सखालिन सौंपने के लिए तैयार नहीं था। रूस ने यह दावा किया कि उसके क्षेत्रीय अधिकारों का खंडन नहीं हुआ था और इसलिए उसे हारा हुआ देश नहीं कहा जा सकता और उसे जापान के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार था। यह दृष्टिकोण रूस ने संधिवार्ता के दौरान बनाए रखा। परिणाम स्वरूप जापान ने संधि करके शांति स्थापित करने का फैसला कर लिया, अन्यथा उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आरोप लगाया जा सकता था कि रूस से धन हड़पने के लिए उसने बेमानी युद्ध को शुरू किया। इस प्रकार जापान ने युद्ध क्षति को हर्जाने की मांग के रूप में समाप्त कर दिया और रूस ने सखालिन को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटना स्वीकार कर लिया। इसमें दक्षिणी हिस्से जापानी प्रायद्वीपों के नज़दीक थे और इनसे जापानी मत्स्य अधिकार जापान को दिए जाने तय हुए। चीन के कुछ साधारण संशोधनों के बाद इस संधि को दिसंबर 1905 में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार रूसी जापानी युद्ध उस समझौते से समाप्त हुआ जिसे कोई भी युद्धरत देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जापान में विशेष रूप से इसका जन विरोध हुआ, परंतु इस युद्ध ने सुदूर पूर्व में नवीन शक्ति संतुलन को जन्म दिया और इससे जापान एशिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अनेक जन विरोधों में जापान को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा और अनेक जन विरोधों और पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ दंगों में इस बात पर विरोध प्रकट किया गया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। परंतु इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि युद्ध किसी विशेष प्रदेश या अधिकार को प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ा गया था। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना था। दोनों की सैन्य शक्ति भी लगभग एक सी ही थी और ऐसी दशा में आदर्शों और प्राप्य के बीच दोनों देशों के लिए समझौता करना जरूरी था। जापान का उद्देश्य युद्ध के दौरान रूस को मंचूरिया से बाहर निकालकर कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम करके उसकी स्थिरता को बनाए रखना था। जापान संधिवार्ता के दौरान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा था। वास्तव में जापान ने इसे कोरिया पर अपने कुछ अधिक संरक्षण को स्थापित करके प्राप्त किया था। जापान को आर्थर बंदरगाह, तालियेन, आधा सखालिन और उसके तटों पर मछली पकड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। रूस के लिए जापान की अपेक्षा पोर्ट्समाउथ की संधि राष्ट्रीय घटना अधिक थी। जापानियों की तुलना में युद्ध स्थल और उसमें निहित मुद्दे आम रूसवासियों की समझ से परे थे। जापान वासियों की तरह रूसवासियों ने युद्ध को राष्ट्रीय घटना के रूप में कभी नहीं लिया। वहाँ के निवासियों ने इस युद्ध को जहाँ तक हो सका बर्दाश्त किया और जब यह युद्ध समाप्त हुआ तब भी रूसवासियों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध और शक्ति के प्रति उनका उदासीन और अनमना दृष्टिकोण इसलिए था क्योंकि देश के अंदर क्रांतिकारी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उस दौरान जिन नारों का प्रयोग हुआ उनकी सार्थकता उस सामाजिक और राजनैतिक असंतुलन से जुड़ी हुई थी जो युद्ध के परिणाम स्वरूप और भी बढ़ गया था। यहाँ तक कि विध्वंसक गतिविधियाँ सेना या युद्ध सीमा के आसपास केंद्रित थी। उन्होंने युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति या शांति का प्रयोग अपने दूरगामी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। जहाँ एक ओर प्रेस ने स्थापित शांति को एक कठिन निर्णय के रूप में स्वीकार किया, वहीं औद्योगिक हितों ने इसका स्वागत किया। नौकरशाही इस पर दो हिस्सों में विभाजित थी। एक पक्ष युद्ध को जारी रखना चाहता था, परंतु दूसरे पक्ष ने इसे देश के पुनर्निर्माण के लिए एक सुनहरा मौका माना। पोर्ट्समाउथ की संधि से जापान और रूस में उत्पन्न असंतोष दो स्थितियां पैदा कर सकता था। बदले की भावना से उत्पन्न युद्ध या अस्थायी शक्ति संतुलन, युद्ध की घटनाओं और संधिवार्ता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों ही संभावनाएं इस स्थिति में निहित थी। परंतु शक्ति संतुलन स्थापना की संभावना कुछ समय के लिए ही अधिक थी। इस दृष्टि से यह लगता है कि ब्रिटेन और अमेरिका की उन आशाओं की पूर्ति हो सकती थी जो मार्च 1901 में जारी ज्ञापन में और राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा कई बार व्यक्त की गई थी। ब्रिटिश ज्ञापन पत्र में जापान की लियाओतुंग प्रायद्वीप पर अधिकार स्थापित करवाने के उद्देश्य से सहायता देने के लिए जिस नीति को स्पष्ट किया गया वह इस प्रकार से थी। जापान द्वारा इस पर अधिकार इस बात की गारंटी होगी कि जापान और रूस के बीच कोई समझौता नहीं होगा। इससे इंग्लैंड और यूरोप को फायदा होगा। पीत खतरे पर रूस अंकुश लगाएगा और रूसी खतरे पर जापान। इट्स पोसेशन बाय जापान वुड बी ए गारंटी डैट देयर वुड बी नो कंसिलिएशन बिटवीन रसिया एंड जापान। दिस वुड बी एन एडवांटेज टू इंग्लैंड एंड यूरोप। द येलो डेंजर वुड बी केप्ट इन चेक बाय रशिया एंड द रशियन डेंजर बाय जापान। रूजवेल्ट की भूमिका और पोर्ट्समाउथ समझौते की नीति को विरोधी संतुलन का नाम दिया गया, परंतु यह उतनी ही विश्वसनीय व्यवस्था थी जितनी स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी शक्तियों के विरोधी हितों को ध्यान रखकर की जा सकती हो।